अध्याय चौथा। रात को आश्रम की छत पर लेटे हुए मैं टकटकी लगाकर तारों से जगमगाते आकाश को देख रहा था। मोर गा रहे थे और चौकीदार आपस में जोर जोर से भगवान के नाम पुकारते हुए गांव में पहरा दे रहे थे, किंतु रात में आती इन सब ध्वनियों में इनमें से एक ने मेरे कानों को सबसे अधिक वशीभूत कर लिया। वो थी हवा में दूर से बहकर आती हुई हरे कृष्ण महामंत्र की धुन। प्रत्येक रात्रि बारी बारी से एक वृद्ध पुरुष और एक स्त्री माइक पर कीर्तन गाते रहते। चौकीदारों, मोरों और उस वृद्ध पुरुष और स्त्री की ये ध्वनियां ऐसी आध्यात्मिक संगीत रचना बनाती कि मेरा हृदय झकझोर उठता। मैं उस वृद्ध साधु के विषय में सोचने लगा जिसने एक टूटी स्लेट पर खड़ियां के टुकड़े से मेरे लिए एक संदेश लिखा था। क्या मैं उस जादुई वृंदावन में श्रीकृष्ण के लिए पागल बनता जा रहा था? पारंपरिक रूप से भक्त वृंदावन जैसे तीर्थ की पूजा करने के लिए उसकी परिक्रमा करते हैं। एक ही रात्रि एक रहस्यमयी शक्ति मुझे छत से नीचे वृंदावन के धूल भरे परिक्रमा मार्ग पर खींच लाई। चंद्रमा के प्रकाश में मैं नदी तट से लगे मार्ग पर चलने लगा जो वन की ओर जाता था। दूर से एक ध्वनि मुझे खींच रही थी। जैसे जैसे मैं निकट आया मेरी आशाएं उड़ान भरने लगीं। क्या ये वही गीत था जिसे प्रतिरात्रि वे वृद्ध पुरुष और स्त्री गाकर मुझे सम्मोहित कर देते थे? मैं उसका स्रोत खोजने के लिए उत्कंठित हो उठा। मैं जितना निकट जाता मंत्र की ध्वनि उतनी ऊंची हो जाती। हाँ, ये वही गीत है। शीघ्र ही मैंने स्वयं को एक प्राचीन मंदिर में पाया जो भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हनुमान जी का मंदिर था। वहां लगभग 80 वर्ष के एक पुरुष और स्त्री फर्श पर बैठे कीर्तन कर रहे थे। उनकी आंखें तल्लीनता में बंद थी। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और देखने से वे किसान लग रहे थे। रात के लगभग 1 बजे थे और मैं भी उस परिचित सुर में कीर्तन गाने के लिए वहां बैठ गया। बाद में जब मैं वहां से जाने लगा तो उन्होंने अगले दिन दोपहर के भोजन पर मुझे आमंत्रित किया। अगली दोपहर मैं उसी धूल भरे मार्ग से होता हुआ हनुमान मंदिर पहुंच गया। न जाने क्यों मेरा मन आकांक्षाओं से भरा था। मंदिर में एक मिनट भी नहीं बीता होगा कि 20-25 वर्षीय एक व्यक्ति मेरे पास आया। महाराज जी अभी आपसे मिलना चाहते हैं, उसने कहा। मुझसे? मैंने अपनी ओर संकेत करके पूछा। महाराज जी कौन हैं और वे मुझे कैसे जानते हैं? ओह, वे तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। कृपया क्या तुम मुझे महाराज जी के विषय में कुछ बताओगे? मैंने पूछा। अभी नहीं, महाराज जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम बाद में बातें करेंगे। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे एक धूप से भरे आंगन में ले गया जहां एक मोटे व्यक्ति मधुरता से मुस्काते हुए चौकड़ी मारे लकड़ी के पलंग पर बैठे थे। उनका शरीर एक पुराने कंबल से ढका था। मैं निकट आ गया। छोटी सफ़ेद दाढ़ी से भरा उनका चेहरा एक अलौकिक उल्लास से चमक रहा था। उनकी तेज आँखें मेरी आँखों के झरोखों से मेरे जीवन के रहस्यों में झांकती हुई प्रतीत हो रही थी। वे नीम करोली बाबा थे। जब मैं हिमालय में रह रहा था मैंने उनके असाधारण गुणों के विषय में सुना था। उनके अनुयायी स्नेहपूर्वक उन्हें महाराज जी बुलाते थे। जब मैं उनके निकट गया तो वे अपने सामने भूमि पर अर्धगोलाकार में बैठे कुछ भारतीय शिष्यों से हिंदी में बोल रहे थे। मुझे देखते ही उनकी मोहन मुस्कान फूट पड़ी और उन्होंने मेरा स्वागत किया। उन्होंने अपनी तर्जनी उठाई और एक अनुवादक के माध्यम से बोलने लगे। तुमने ज्ञान की खोज में अपनी संपत्ति एवं सभी सुख आराम का त्याग किया है और बहुत संघर्ष करके भारत आए हो। अब तुम अकेले भ्रमण कर रहे हो और भगवान के लिए रो रहे हो, जबकि वहां दूर बैठा तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए रो रहा है। हाथ के सौम्य संकेत से उन्होंने मुझे अन्यों के साथ बैठ जाने के लिए कहा। डरो मत, उन्होंने ये शब्द इतने गंभीरता से कहे कि उनकी भौहें तन गईं और होंठ कड़क हो गए। सभी कठिनाइयों को सहन करते हुए आनंदित रहो। भगवान श्रीकृष्ण ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और वे तुम्हें वृंदावन लाए हैं। राम और कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किंतु, सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, लोग निंदा और कलह की बुरी आदत के कारण स्वयं अपने लिए नरक उत्पन्न कर रहे हैं। कभी भी दूसरों के दोष मत देखो और अहंकार के मार्ग पर मत चलो। ऐसा लगा कि शायद उन्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम था और उन्होंने वही शब्द कहे जिनकी मुझे आवश्यकता थी। मैं मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित हो गया। किंतु लगभग पूरी दुनिया इस जंजाल में फंसी है, मैं कैसे बच सकता हूँ, मैंने पूछा। मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखें दमक उठीं। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो और सभी को भोजन खिलाओ। हनुमान जी के समान बिना स्वार्थ और लोभ के सेवा करो। ये कुंजी है भगवान को जानने की। एक विनोदी बच्चे के भाव के साथ उन्होंने अपना हाथ अपने मुख की ओर किया, मानो खा रहे हो और हमें प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। प्रसाद के लिए बने विशेष हॉल में प्रवेश करते हुए मैंने अपने मार्गदर्शक से उनके गुरु के विषय में सुनने की आतुरता व्यक्त की। वे मान गए। मैं हिमालय में स्थित नंदीताल के निकट एक गांव से हूँ और बचपन से ही महाराज जी से प्रेम करता हूँ। हम भूमि पर पंक्तियों में बैठ गए। एक भक्त ने हमारे सन्मुख पत्तल रख दी और करछी से उसमें स्वादिष्ट प्रसाद परोस दिया। मेरे मेज़बान सफ़ेद कमीज और पैंट पहने हुए थे। उनके घुंघराले काले बालों में तेल लगा था और वे सुंदरता से कंघी किए थे। एक छोटी प्रार्थना के पश्चात वे नीम करोली बाबा की कुछ स्मृतियां बताने लगे। महाराज जी एक सिद्ध पुरुष हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनके भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान को देखा है। वास्तव में वे सदैव जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कुल्हड़ से शीतल लस्सी का घूंट भरा। मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ, उन्होंने कहा। महाराज जी कई बार एक ही समय में दो स्थानों पर होते हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। हम सर्वथा अनपेक्षित क्षणों में उनके प्रकट या अप्रकट होने की अपेक्षा करते हैं। उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी क्षण वे प्रकट या अदृश्य हो सकते हैं। कभी दंड देते हैं तो कभी प्रशंसा करते हैं, कभी पहेलियों में बात करते हैं तो कभी गहन सत्य बोलते हैं। किसी को ये संसार त्यागने के लिए कहते हैं तो किसी को विवाह करने के लिए। किंतु एक बात से हम सब विश्वस्त हैं कि वे सदैव हमारे अच्छे गुणों को ऊपर लाते हैं और हमें भगवान के निकट ले जाते हैं। वो गर्व से मुस्कुराया। यद्यपि नीम करोली बाबा एक गंभीर योगी हैं, उनका नटखटपन हमारा मन मोह लेता है, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। मुझे गरम गरम हलवा परोसा गया, सूजी और घी से बना। मुंह में लार उत्पन्न कर देने वाली महक से कमरा भर उठा। हम खा ही रहे थे कि नीम करोली बाबा दरवाजे पर आए। हमें प्रसाद का आनंद लेते देख वे प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए। मुझे भी उनके मधुर स्वभाव को देखकर बहुत आनंद हुआ। उन्होंने हमें जो सिखाया, वे स्वयं उसके मूर्तिमान स्वरूप थे। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो और सभी को भोजन खिलाओ, हनुमान जी की भांति। अगले दिन मैं पुनः वहां आया और देखा कि महाराज जी कुछ अनुयायियों के बीच बैठे रामायण से हनुमान जी की भक्ति कथाएं सुना रहे थे। भावावेश में नीम करोली बाबा कांप रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। अगले कुछ सप्ताहों तक मैं प्रतिदिन घंटा डेढ़ घंटा महाराज जी के चरणों में बैठकर बिताता। जब मैं वहां होता, वे कोई औपचारिक प्रवचन नहीं देते, अपितु अपने अनुयायियों के साथ बातचीत या कीर्तन करते। मैं ये देख सम्मोहित हो गया कि कैसे वे प्रश्नों का छोटा किंतु बुद्धियुक्त सटीक उत्तर देते थे, जैसे भगवान की सृष्टि के प्रत्येक जीव की नम्रता, सम्मान और प्रेम से सेवा करो, या केवल श्रीराम के नामों का कीर्तन करो और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक दिन वे मेरी ओर मुड़े, उनकी आंखें मानो मेरी आत्मा को टटोल रही थी। तभी एक अंगुली उठाकर वे बोले, एक एक ए, भगवान एक हैं। पश्चिमी लोग भी नीम करोली बाबा को जानते हैं। मुझे ये उस समय तक मालूम नहीं पड़ा जब तक मेरी पीढ़ी के एक विख्यात व्यक्ति बाबा रामदास वहां नहीं आए। एक दिन जब मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था, रामदास के साथ विदेशियों का एक छोटा समूह अचानक आश्रम में आ पहुंचा। रामदास बाबा 1960 के दशक के हिप्पी आंदोलन के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। पहले वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक विवादग्रस्त प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट थे, जिन्होंने टिमोथी लियरी के साथ मिलकर इस दावे के साथ एलएसडी का प्रसार किया था, एक मादक पदार्थ, कि इसके सेवन से आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है। प्रवेश करने पर रामदास ने नम्रता से अपने सफ़ेद होते सिर को एक छोटे बालक के समान अपने गुरु की गोद में रख दिया। उनके गुरु के हृदय से स्नेह उमड़ पड़ा और वे लाड़पन से अपने शिष्य की सफ़ेद होती दाढ़ी को खींचते और उसके सिर को एक बालक की भांति थपथपाते हुए हंसने लगे। महाराज जी ने कहा, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे लिए ये देखना बहुत रोचक था कि एक विख्यात हार्वर्ड विद्वान और प्रभावशाली व्यक्ति अपने साथ हो रहे एक छोटे शरारती बच्चे जैसे व्यवहार का आनंद ले रहा था। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखा और हाथ हिलाते हुए बोले, जाओ प्रसाद ले लो। महाराज जी को रहस्यमय तरीके से उनके असुचित आगमन का भान हो गया था। तभी अन्य दिनों की अपेक्षा आज अधिक मात्रा में विशेष भोज की व्यवस्था की गई थी। मुझे रामदास और उनके समूह को वृंदावन के कुछ पवित्र स्थलों पर ले जाने का सौभाग्य मिला। एक दिन हमने आनंदमयी माँ के आश्रम में उनके कीर्तन और प्रवचन में भाग लिया और उन्हें हिमालय में मेरे साथ हुई भेंट का स्मरण था। विशाल श्रोता समूह को प्रवचन देते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया तथा मेरे आध्यात्मिक मार्ग की सही दिशा की पुष्टि करते हुए कहा, जब भी तुम्हारे लिए संभव हो पवित्र नाम के प्रवाह को बनाए रखो। भगवान के नामों का उच्चारण भगवान के ही संग में रहने के समान है। यदि तुम अपने परम मित्र के साथ संग करोगे तो वे तुम्हारे समक्ष अपना सच्चा सौंदर्य प्रकट करेंगे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ रामदास और मैं अंतरंग वार्तालाप करने लगे, किंतु रात हो रही थी इसलिए उन्होंने मुझे बातचीत जारी रखने के लिए अगले दिन अपने निवास पर आमंत्रित किया। मैं समय से ही पहले जयपुर धर्मशाला पहुंच गया। वहां अतिथिगृह, कपड़ों की दुकानों और खाने पीने के खोमचों के बीच शोरगुल से भरी गली में बना था। दोनों ओर से आते रिक्शा चालक पैदल चलने वालों को हटाने के लिए जोर जोर से भोंपू बजा रहे थे। बाबा रामदास ने दरवाजा खोला। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से उनका मुस्कुराता चेहरा चमक उठा। मैंने अपनी दृष्टि उनके कमरे में घुमाई जो किसी विख्यात प्रोफेसर का निवास स्थान नहीं अपितु एक सीधे सादे साधु का कमरा लग रहा था। शिष्टता से वे मुझे कमरे में रखे एकमात्र पलंग तक ले गए। मुझे बैठाने के पश्चात वे स्वयं अपनी लहराती सफ़ेद धोती को फैला चौकड़ी मारकर बैठ गए। हम आमने सामने बैठे थे। उनके गंजे होते सिर के सफ़ेद बाल लहराकर उनके कंधे पर गिर रहे थे। पास की खिड़की से आए हवा के झोंके ने उनकी बिखरी दाढ़ी को हल्के से हिला दिया। उनकी बड़ी नीली आँखें चमक रही थीं। आँखों के कोनों में पड़ी धुंधली झुर्रियाँ उनकी मुस्कुराहट के साथ और गहरी हो जातीं। बिना कोई शब्द कहे हम केवल आँखों के माध्यम से एक दूसरे के हृदय में देख रहे थे। वे क्षण मानो कालातीत थे। हमारे बीच उस लंबी टकटकी ने मेरी दृष्टि को इस प्रकार प्रभावित किया कि कभी वे मुझे एक मासूम बच्चे लगते थे तो कभी एक प्राचीन उदासीन साधु। अनायास ही मुझे भगवद्गीता का एक श्लोक स्मरण हो आया, जिस प्रकार शाश्वत आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करती है उसी प्रकार मृत्यु के समय वो अन्य शरीर में प्रवेश करती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से विमोहित नहीं होता। एक विलक्षण शांति पूरे कमरे में छाई थी। इस प्रकार शायद आधा घंटा बीत गया। फिर रामदास ने एक गहरी श्वास भरी, अपने कंधों को धीरे से उचकाया और खामोशी तोड़ते हुए ओम का उच्चारण किया। क्या आप मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में कुछ बता सकते हैं, मैंने उनसे पूछा। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो भारत कैसे आए और कैसे अपने गुरु से मिले। रामदास पलंग पर थोड़ा हिलडुल कर सीधे बैठ गए, मानो कथा सुनाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हों। कुछ वर्ष पूर्व मैं भारत में आया था, उन्होंने आरंभ किया। मैं अपने साथ LSD लाया, ये सोचते हुए कि यहाँ हमें कोई तो मिलेगा जो इसके विषय में हम पश्चिम वासियों को हमसे अधिक समझ पाएगा। यात्रा के दौरान मुझे एक अमरीकी साधु भगवान दास मिले जिन्होंने मुझे नीम करोली बाबा के पास भेजा। 1967 की बातें हैं। मैं अपनी माँ की मृत्यु से शोकग्रस्त था। महाराज जी ने मेरे हृदय में देखा और अकल्पनीय करुणा द्वारा मुझे ढाढ़स बंधाया। मेरे द्वारा अपने जीवन के विषय में एक भी शब्द कहे बिना उन्होंने मेरे हृदय को पढ़ लिया और मेरे भूतकाल की गोपनीय बातें बता दी। उनकी शक्तियों ने उनके प्रेम, बुद्धि और हास्य विनोद के साथ मिलकर मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। जब मैं पहली बार उनसे मिला मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, मैंने कहा। ऐसा लगा मानो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। बाबा रामदास मुस्कुराए। एक दिन महाराज जी ने मुझसे पूछा, वो दवाई कहाँ है? पहले तो मैं चकरा गया, किंतु भगवान दास ने बताया कि वे एलएसडी के बारे में पूछ रहे हैं। कौतूहलवश मैंने शुद्ध एलएसडी की 3 गोलियां निकालकर उन्हें दे दी और मुझे आश्चर्य में डालते हुए वे उन्हें निगल गए। मैं वैज्ञानिक तरीके से उनकी प्रतिक्रिया को जांचने के लिए तैयार था, किंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वे तो एलएसडी से परे हैं। हिमालय के योगियों के शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण मैं विस्मय से हंसने लगा। रामदास कमर सीधी रखे चौकड़ी मारकर बैठे रहे। ऊपर की ओर खुली उनकी हथेलियां उनके गोद में रखी थी। मैं महाराज जी के संग से स्वयं को अलग नहीं रख पाया और इसलिए जितना संभव हुआ उनके साथ रहा। मुझे अपना शिष्य स्वीकारते हुए उन्होंने मुझे रामदास नाम दिया, अर्थात भगवान राम का सेवक। उनके असाधारण संग में महीने बीत गए। भले ही मैं अमेरिका में बहुत प्रभावशाली था, महाराज जी ने मुझे वहां से किसी को उनके पास लाने से मना कर दिया। रामदास ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। किसी भी संसारी वस्तु की ओर उनका रुझान नहीं है, न धन, न नाम और न अनुयायी। मैंने उन जैसा व्यक्ति कभी देखा नहीं। अपने गुरु के प्रति प्रेम की अनुभूति करते हुए उनकी वाणी कांपने लगी। जब मैं महाराज जी के साथ बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे हृदय में सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। उसी वर्ष 1971 में रामदास ने अपनी कथा एक प्रसिद्ध पुस्तक बी हियर नाउ में प्रकाशित की। जैसे जैसे दिन बीते, हम अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्राओं से प्राप्त साक्षात्कारों और प्रेरणाओं से आपस में बांटने लगे और इस प्रकार हम दोनों के बीच बंधुत्व की भावना बढ़ने लगी। उनसे अलग होने से पहले मैंने अपने मन के भीतर बैठी चिंता उन्हें बताई जो मुझे परेशान कर रही थी। भारत माता मेरा आध्यात्मिक घर बन चुकी है। मुझे यहाँ अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना है, किंतु मुझे डर है कि मेरे वीज़ा की बढ़ोत्तरी अस्वीकृत न हो जाए और मुझे यहाँ से जाने के लिए बाध्य न होना पड़े। बाबा रामदास ने अपनी आंखें मुंदी और गहन विचारों में डूब गए। बाहर व्यस्त गली में हो रही हलचल की अपेक्षा कमरा निस्तब्ध था। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की शांति में प्रविष्ट हो गया। 5 मिनट बीत गए। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने रामदास बाबा को अपनी और सौम्य मुस्कान के साथ देखते पाया। उन्होंने धीमे से कहा, भले ही तुम्हें इंडिया की भौगोलिक सीमाएं छोड़नी पड़ सकती हैं, किंतु कोई भी तुम्हें भारत छोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकता, उस भारत को जो इंडिया की आत्मा है। यहाँ पे 4th अध्याय समाप्त होता है।